लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि प्रत्येक बपतिस्मा प्राप्त व्यक्ति अपने जीवन आचरण द्वारा सुसमाचार का साक्ष्य प्रस्तुत करे तथा प्रभु ख्रीस्त के प्रेम संदेश को जन जन में फैलाने के मिशन के प्रति वचनबद्ध रहे। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण में प्रस्तुत है सामयिक लोकोपकारी चर्चा भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर अनुग्रह मिंच और जूलियट क्रिस्टोफर। श्रोताओ, यूएन महासभा का 76वां सत्र औपचारिक रूप से 14 सितंबर को शुरू हुआ था और यूएन महासभा के नए अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद ने बताया कि 21 से 27 सितंबर तक चलने वाले आम चर्चा यानी जनरल डिबेट में 194 वक्ताओं ने महासभा के हॉल से दुनिया को संबोधित किया, जिनमें 100 राष्ट्राध्यक्ष, 52 सरकारों के अध्यक्ष, 3 उपराष्ट्रपति और 34 मंत्री थे। उन्होंने इस बिंदु पर भी रेखांकित किया कि कुल 194 वक्ताओं में से केवल 18 महिलाएं थीं, इसलिए तराजू के दो पलड़ों को संतुलन लाने के लिए और ज्यादा प्रयास व कार्यवाही किए जाने की जरूरत है। संयुक्त राष्ट्र महासभा अध्यक्ष ने 1 अक्टूबर को पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि साझा चुनौतियों का सामना करने के लिए बहुपक्षवाद ही एकमात्र रास्ता है। यूएन महासभा के अध्यक्ष बनने के बाद यह उनकी पहली प्रेस वार्ता थी। महासभा अध्यक्ष ने जनरल डिबेट का समापन करते हुए उसकी कामयाबी का श्रेय ठोस एहतियाती उपायों व टीकाकरण की उच्च दर को दिया। ज्यादा जानकारी के साथ सचिन गौड़।
यूएन महासभा प्रमुख अब्दुल्ला शाहिद ने शुक्रवार को पत्रकारों को पहली बार संबोधित किया।
मल्टीलेटरलिज्म इज द ओनली वे टू एड्रेस कॉमन चैलेंजेस एंड वन ऑफ देम COVID-19 is not over yet. In fact, it will not be over until we achieve universal vaccination.
चुनौतियों का समाधान ढूंढने के लिए बहुपक्षवाद पर बल देते हुए महासभा अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद आगाह कर रहे थे कि वैश्विक महामारी COVID-19 अब भी एक बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि ये तब तक खत्म नहीं होगी जब तक दुनिया में सभी का टीकाकरण पूरा नहीं हो जाता। टीकाकरण प्रयासों में तेजी लाने के लिए उन्होंने अगले वर्ष जनवरी में एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाए जाने की बात कही है। जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर महासभा प्रमुख ने 26 अक्टूबर को एक कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि स्कॉटलैंड के ग्लासगो में नवंबर महीने में यूएन के वार्षिक जलवायु सम्मेलन से पहले इस कार्यक्रम का उद्देश्य आमजन, पृथ्वी और समृद्धि के लिए जलवायु कार्रवाई को गति प्रदान करना है। अब्दुल्ला शाहिद ने साथ ही महामारी से उबरने की कार्रवाई में लैंगिक नजरिए का ख्याल रखे जाने और लैंगिक असमानता को दूर किए जाने को अपनी प्राथमिकताओं में गिनाया है।
संयुक्त राष्ट्र प्रमुख अंतोनियो गुटेरेस ने दुनिया की अनमोल वैश्विक परिसंपत्तियों की रक्षा और साझा आकांक्षाओं को पूरा करने के खातिर तत्काल कार्रवाई का आह्वान करते हुए टिकाऊ विकास लक्ष्यों के नए पैरोकारों के नामों की घोषणा की है। ये सभी पैरोकार जलवायु कार्रवाई, डिजिटल विभाजन, लैंगिक समानता और बाल अधिकारों के मुद्दों पर सक्रिय होंगे। इनमें से एक है भारत से नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी। मध्य प्रदेश विदिशा के कैलाश सत्यार्थी एक भारतीय बाल अधिकार कार्यकर्ता और बाल श्रम के विरुद्ध पक्षधर हैं। उन्हें बच्चों और युवाओं के दमन के खिलाफ और सभी को शिक्षा के अधिकार के लिए संघर्ष करने हेतु शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। पेशे से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर कैलाश ने 26 वर्ष की उम्र में ही अपना कैरियर छोड़कर बच्चों के लिए काम करना शुरू कर दिया था। यूएन न्यूज की अंशु शर्मा ने दिल्ली में कैलाश सत्यार्थी के साथ बातचीत की।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव के नए एसडीजी एडवोकेट के रूप में नियुक्त होने पर आपको बहुत बहुत बधाई। इस नई भूमिका के आपके लिए क्या मायने हैं?
मैं इसको एक बहुत बड़ी नैतिक जिम्मेवारी और जवाबदेही के रूप में लेता हूं, खासकर तब जब दुनिया में चुनौतियां बढ़ रही हैं हर क्षेत्र में, और सारे के सारे जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं वो खतरे में पड़े हैं। तो हर किसी की जिम्मेवारी है पूरी दुनिया में, लेकिन जब संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने मुझ पर यह भरोसा जताया है तो मैं इस जिम्मेवारी को और ताकत के साथ निभाऊंगा।
आपकी नियुक्ति एक ऐसे महत्वपूर्ण समय पर हुई है जब दुनिया भर में बाल श्रम में काफी वृद्धि हुई है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है?
लेकिन मुझे इस पर नाराजगी है कि सतत विकास लक्ष्यों की घोषणा के पहले 4 सालों में बाल मजदूरों की संख्या बढ़कर 15 करोड़ से 16 करोड़ के लगभग हो गई, यानी कि हर रोज 5 से 11 वर्ष की आयु के बीच के बच्चों को, 10,000 बच्चों को बाल श्रम में धकेला गया, गुलामी में, वेश्यावृत्ति में और तरह तरह के शोषण में। यह कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? इसके लिए कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। यहां पर लगता है कि एक तरफ तो हम सब ने मिलकर बहुत अच्छी अच्छी बातें कही, मैं भी उस दिन शामिल था जब सतत विकास लक्ष्यों की घोषणा हुई, तो मैं ये आशा करता था कि अब सब जिम्मेवारी उठाएंगे, लेकिन दुर्भाग्य से ये नहीं हो रहा।
बाल श्रम के खिलाफ आपका ये जो सफर है, आपकी कहानी शुरू कैसे हुई?
इसकी शुरुआत तो बिल्कुल मेरे बचपन से हो गई थी। इसको कह सकते हैं कि पहली चिंगारी मेरे मन में 5 साल की उम्र में जागी जब मैं पहली बार अपने स्कूल गया। मुझे स्कूल में घुसते वक्त दरवाजे पर एक मोची बच्चा जूतों पे पॉलिश करते हुए या जूते सुधारते हुए देखा। उसकी उम्र भी मेरे बराबर थी, करीब करीब 6 साल का होगा। तो मुझे बहुत एक सदमा लगा और कुछ असहज महसूस किया मैंने। मैंने अंदर अपने शिक्षक से जीवन में पहला सवाल पूछा कि सर ये एक बच्चा बाहर बैठ के काम कर रहा है और हम सब अंदर हैं। मेरे टीचर ने कहा कि ये कोई नई बात नहीं है, गरीबों के बच्चे उनकी माँ बाप की मदद करते हैं। यही बात मेरे परिवार वालों ने और दोस्तों ने भी मुझे समझाने की कोशिश की, लेकिन उस घटना ने मुझे एक नए तरीके से सोचने की आंखें दी, समझने की आंखें दी। मैंने देखा कि और भी बच्चे इसी तरह मजदूरी कर रहे हैं, स्कूल नहीं जा रहे हैं, सड़कों पर, ढाबों पर काम कर रहे हैं। तो मेरे मन में बहुत सवाल उठने लगे जिनका जवाब मैं खुद ढूंढने की कोशिश करता रहा। बाद में 1980 में मैंने फैसला किया कि अब मैं पूरी तरीके से इसी पर काम करूंगा, लेकिन बाल मजदूर के खिलाफ कोई काम ऐसा हो नहीं रहा था, कोई संगठन भी काम नहीं कर रहा था, यहां तक कि ILO का कोई प्रोग्राम नहीं था। वो कई साल बाद आया, 10-12 साल बाद आया। संयुक्त राष्ट्र संघ का बाल अधिकार घोषणा पत्र भी 10 साल बाद आया, 1989-90 में, और मैं बात कर रहा हूं 1980 की। तो बाल अधिकार जैसे शब्दों की कोई चर्चा नहीं होती थी, तो बहुत बहुत मुश्किल दौर था। तो मैं एक पत्रिका निकाल के ऐसे ही बच्चों और महिलाओं और समाज के ऐसे तबकों के बारे में लिखने लगा।
भविष्य की क्या योजनाएं अब SDG एडवोकेट के रूप में, आगे क्या रणनीति रहेगी आपकी?
कई नोबेल पुरस्कार विजेताओं और कई दुनिया के जो बड़े नैतिक नेतृत्वकारी हैं, नैतिक हस्तियां हैं, उन सबको मिलाकर एक मंच बनाए हुए हैं, लॉरियर्स एंड लीडर्स फॉर चिल्ड्रन। उसके माध्यम से हम बच्चों के मुद्दे को और ज्यादा प्राथमिकता में लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जितना जितना हम 2025 और फिर 2030 के नजदीक पहुंच रहे हैं, उतनी ज्यादा व्यग्रता, उतनी ज्यादा इम्पेशंस हमारे अंदर होनी चाहिए, सभी के अंदर होनी चाहिए। तो वो करने की हम कोशिश कर रहे हैं कि सरकारें बच्चों के मुद्दों को प्राथमिकताएं दें। फाइनेंस के मामले में भी हम अमीर देशों की सरकारों से G7 और G20 के साथ संपर्क में हैं और प्रयास कर रहे हैं कि प्राथमिकता के तौर पर जो सबसे वंचित बच्चे हैं उनके मामले में कोई अनुदान में कटौती न की जाए बल्कि उसे बढ़ाया जाए, जिससे कि एक बेहतर दुनिया का निर्माण हो सके। तो इन दिशाओं में हम काम कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा सबसे बड़ा अभियान है अभी वो है 100 मिलियन फॉर 100 मिलियन। आइडिया उसके पीछे ये है कि दुनिया में 10 करोड़ के लगभग बच्चे अपने बचपन से वंचित हैं, और दूसरी तरफ कम से कम 10 करोड़ नौजवान, नवयुवतियां स्कूलों, कॉलेजों के अंदर, मोहल्लों में, शहरों में ऐसे हैं जो समाज के लिए कुछ बेहतरी का काम करना चाहते हैं। अगर किसी पर पूरा भरोसा किया जा सकता है तो वो युवा हैं। उनके अंदर जो जज्बा है, उनके अंदर जो ऊर्जा है, उनके अपने जो सपने हैं, उनमें बहुत शक्ति है, भारत में भी और पूरी दुनिया में भी। और इसी आधार पर मैं कह सकता हूं कि युवाओं की आवाज ही सबसे सच्ची और सबसे सशक्त सबसे ईमानदार आवाज है जो हर क्षेत्र में उठनी चाहिए।
और इसी के साथ हम लोकोपकारी चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आज के सभी विषय यूएन हिंदी समाचार से लिए गए थे और अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत और उसके बाद समाचार।
तू ही प्रेम है मेरे प्रभु, मुझे प्रेम से भर दे प्रभु। तेरा प्रेम मैं जग में फैलाऊं, ऐसा अनुग्रह पाऊं सदा।
तू ही प्रेम है मेरे प्रभु, मुझे प्रेम से भर दे प्रभु। तेरा प्रेम मैं जग में फैलाऊं, ऐसा अनुग्रह पाऊं सदा।
तू ही करुणा मेरे प्रभु, मुझे करुणा से भर दे प्रभु। तेरी करुणा मैं जग में फैलाऊं, ऐसा अनुग्रह पाऊं सदा।
तू ही करुणा मेरे प्रभु, मुझे करुणा से भर दे प्रभु।
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत हैं समाचार। रोम के ऐतिहासिक स्मारक कोलोसेयम में विभिन्न धर्मों के विश्व प्रतिनिधियों के साथ संपन्न शांति हेतु 35वें अंतर्राष्ट्रीय प्रार्थना सम्मेलन में गुरुवार को संत पापा फ्रांसिस ने सभी से आग्रह किया कि वे हृदयों के शुद्धिकरण का प्रयास करें ताकि संपूर्ण विश्व में शांति स्थापित हो सके। शांति हेतु 2 दिवसीय 35वें अंतर्राष्ट्रीय प्रार्थना सम्मेलन का आयोजन रोम के मानवतावादी लोकोपकारी संगठन संत इजिदियो समुदाय द्वारा किया गया था, जिसमें विश्व के लगभग 40 राष्ट्रों के धार्मिक नेताओं और सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लेकर शांति हेतु प्रार्थना की। भाइयों के रूप में लोग पृथ्वी का भविष्य शीर्षक से संपन्न उक्त प्रार्थना सम्मेलन में ख्रिस्तीय धर्म के अतिरिक्त इस्लाम, यहूदी, बौद्ध, तेनरिक्यो, हिंदू और सिख धर्मों के नेताओं ने मैत्री और संवाद की भावना में भाग लिया। प्रार्थना सम्मेलन के अवसर पर संत इजिदियो समुदाय के अध्यक्ष मार्को पलियात्सो ने एक वीडियो संदेश में प्रत्येक से आग्रह किया कि वे कोविड महामारी द्वारा प्रस्तुत अवसर को न खोएं। उन्होंने कहा, यह हमें एक दूसरे से अलग करने वाला केवल गिरावट का एक क्षण ही नहीं अपितु एक नई शुरुआत हो। प्रार्थना सम्मेलन का समापन करते हुए संत पापा फ्रांसिस ने प्रभु ईश्वर से प्रार्थना की कि मानवता के समक्ष प्रस्तुत चुनौतियों का सामना करने के लिए सभी लोग एकात्मता के कार्यों में लगें। उन्होंने कहा कि विश्व में शांति की स्थापना के लिए हृदयों का असैन्यीकरण नितांत आवश्यक है। विश्व के विभिन्न राष्ट्रों और साथ ही युद्ध एवं हिंसा के क्षेत्रों से शांति के स्थल रोम आने के लिए संत पापा फ्रांसिस ने सभी के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह प्रार्थना सम्मेलन दर्शाता है कि प्रार्थना शक्ति का एक शांत स्रोत है जो शांति लाता है और घृणा से भरे दिलों को निशस्त्र कर देता है। संत पापा ने कहा कि रोम के ऐतिहासिक स्मारक कोलोसेयम में इस सम्मेलन का आयोजन अर्थपूर्ण है, क्योंकि किसी युग में यह स्थल बड़े पैमाने पर मनोरंजन के लिए लोगों को एक दूसरे के खिलाफ लड़ने और मौत के घाट उतारने के लिए कुख्यात था। उन्होंने कहा कि यदि हम भी हिंसा को रोकने का कोई प्रयास नहीं करते तो हम भी हिंसा, युद्ध और भ्रातृहत्या के खेल के दर्शक मात्र बन जाते हैं। संत पापा ने स्मरण दिलाया कि लोगों और बच्चों का जीवन कोई खेल की वस्तु या खिलौना नहीं है, इसलिए हमें उदासीन दर्शक नहीं होना चाहिए। इसके विपरीत हमें उन लोगों के साथ सहानुभूति रखनी चाहिए जो हमारी मानवता, इसकी आकांक्षाओं, इसके संघर्षों और इसकी कमजोरियों को साझा करते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे भाइयों और बहनों के साथ जो कुछ भी होता है वह हमें प्रभावित करता है। हालांकि उन्होंने कहा कि इस सच्चाई को पहचानने के लिए बहुत सा साहस चाहिए। संत पापा ने कहा कि युद्ध मानव जीवन के साथ खिलवाड़ करता है और यह राजनीति और मानवता की पराजय है। संत पापा फ्रांसिस के साथ विभिन्न बैठकों में भाग लेने रोम आए एंग्लिकन ख्रिस्तियों के धर्माधिपति महाधर्माध्यक्ष जस्टिन वेल्बी ने इस सप्ताह वैटिकन न्यूज से बातचीत में कहा कि कलीसिया का कार्य सेवा करना है, शासन करना नहीं। संत पापा फ्रांसिस के साथ अपनी मुलाकातों के विषय में महाधर्माध्यक्ष वेल्बी ने बताया कि इटली और यूके की सरकारें 31 अक्टूबर से 11 नवंबर तक ग्लासगो में जारी COP26 सम्मेलन की तैयारी हेतु संयुक्त रूप से संलग्न रहे हैं। उन्होंने कहा कि धर्म 80% विश्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। अस्तु यह सवाल नहीं है कि विभिन्न कलीसियाएं क्या कर सकती हैं, अपितु सवाल यह है कि विभिन्न धर्म मिलकर विश्व के लिए क्या कर सकते हैं। महाधर्माध्यक्ष ने कहा कि धरती की सुरक्षा के लिए, जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणामों को रोकने के लिए और भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए जरूरी है कि कलीसियाएं क्रियाशील रहें, गतिमान रहें। उन्होंने कहा कि राजनीतिज्ञों के समान केवल भाषण देने का कोई लाभ नहीं, अपितु हमें अपने विचारों को क्रियाओं में बदलने की जरूरत है। कैथोलिक कलीसिया और एंग्लिकन चर्च के बीच ख्रिस्तीय एकतावर्धक वार्ताओं के विषय में महाधर्माध्यक्ष जस्टिन वेल्बी ने कहा कि कलीसिया द्वारा धर्म सभाओं का आयोजन महत्वपूर्ण है, जिसमें धर्माध्यक्षों और पुरोहितों सहित लोग धर्मी विश्वासी भी अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं तथा कलीसिया के मिशन में योगदान देते हैं। महाधर्माध्यक्ष ने बताया कि इस सप्ताह संत पापा फ्रांसिस के साथ संपन्न बातचीत में इसी तथ्य को रेखांकित किया गया कि कलीसिया को स्थगित नहीं होना चाहिए, उसे अनवरत गतिमान और क्रियाशील रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि कैथोलिक और एंग्लिकन कलीसियाओं के बीच संपन्न एकतावर्धक वार्ताओं द्वारा दोनों कलीसियाओं के बीच समझदारी और मैत्री की वृद्धि हुई है, जो कि इन कलीसियाओं के सेवा कार्यों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि कलीसिया का कार्य सेवा है, शासन नहीं। बाल्य सुरक्षा में संलग्न विश्वव्यापी संगठन सेव द चिल्ड्रन ने अपनी हालिया रिपोर्ट में प्रकाशित किया कि कोविड महामारी के कारण समस्त विश्व में 83% बच्चे नकारात्मक भावनाओं में वृद्धि का अनुभव कर रहे हैं और नाबालिगों में अवसाद, चिंता, अकेलापन और आत्म नुकसान का स्तर बढ़ रहा है। 8 अक्टूबर को प्रकाशित एक विज्ञप्ति में उक्त रिपोर्ट का हवाला देते हुए सेव द चिल्ड्रन संगठन ने कहा कि कोविड महामारी के कारण जिन देशों में 17 से 19 सप्ताहों तक स्कूल बंद रहे, वहां 96% बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हुआ। इटली में भी लगभग 70% बच्चे अधिक असुरक्षित, उदास और नींद की बीमारी से पीड़ित थे। रिपोर्ट में संगठन ने सरकारों से बच्चों और किशोरों के लिए मानसिक स्वास्थ्य और मनोसामाजिक समर्थन को उनके अधिकार रूप में मान्यता देने का आग्रह किया है तथा उन्हें राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा में एकीकृत करने की भी मांग की है। विगत 100 वर्षों से बच्चों के स्वास्थ्य और बच्चों के अधिकारों के लिए कार्यरत सेव द चिल्ड्रन ने विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस की पूर्व संध्या अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की। 2020 में 46 राष्ट्रों के 13,000 बच्चों पर किए सर्वेक्षण पर यह रिपोर्ट आधारित है। इसमें कहा गया है कि कोविड महामारी के उभरने के प्रथम 6 माहों में विश्व के कई देशों में बच्चे लॉकडाउन और प्रतिबंधों की स्थिति में रहे, जिससे उनके मानसिक स्वास्थ्य पर गहन प्रभाव पड़ा है। और इसी के साथ वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।